अपनी भाषा हिंदी। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग तक बनती सीढ़ियों की प्रगति की रफ्तार देखकर देवता घबराए और इसे रोकने का निर्णय लिया। अनन्य तरीके खोजे गए और सरलतम उपाय जो समझ में आया किया, और सीढ़ियां अधूरी ही रह गईं। देवताओं ने पता कर लिया कि सीढ़ियां बनाने के काम से जुड़े सारे लोगों की भाषा एक थी, इसलिए उनमें एक ताल और तन्मयता थी। देवताओं ने उनकी भाषाएं अलग अलग कर दी ताकि मानव एकजुट ना हो सके, और इससे देवताओं को सफलता हासिल हो गई। शायद यही खेल अंग्रेजों ने हमारे देश में खेला, जिसे आज भी हम भारतीय भाषाई एकजुटता के लिए तरस रहे हैं। बात शायद किसी ने मनगढ़ंत ही कही होगी या मजाक ही किया होगा, लेकिन इससे ये बात समक्ष तो आती ही है कि भाषा का गठबंधन में एक विशेष स्थान है, और इन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे हिंदी भाषी पूर्वजों ने भाषा की एकता पर जोर दिया और एक राष्ट्रव्यापी भाषा को चुनना चाहा। शायद राजनैतिक कारणों से कुछ मतभेद तो हुए और लोगों में सहमति नहीं बन पाई। फिर कांग्रेस के अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना एक मुद्दा ही बन गया। राष्ट्रभाषा शब्द के लोगों ने इतने अर्थ निकाल लिए कि इस शब्द का कोई स्थिर अर्थ नहीं रह गया। राष्ट्र भर में बोली जाने वाली भाषाओं को कुछ ने राष्ट्रभाषा कहा तो कुछ ने इसे देश की भाषा समझा। भिन्नता मिटाने की चेष्टा किसी ने की हो, ऐसा कहीं से कोई वाकया नहीं मिलता। और तो और, कांग्रेस का अपने अधिवेशन में इसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाना अन्य राजनीतिक पार्टियों को शायद रास नहीं आया, और तब से अब तक राष्ट्रभाषा शब्द का कोई भी स्थिर अर्थ नहीं निकल सका। सन 1995 में राजभाषा सचिवालय से प्रकाशित एक गृह पत्रिका में मैंने पहली बार राष्ट्रभाषाएं शब्द देखा पढ़ा। लेख तत्समय गृह मंत्री श्री S.B. चवन ने लिखा था। इसके बाद दो एक जगहों पर राष्ट्रभाषाएं शब्द दिखा, पर अब तो इसका प्रयोग सीमित ही है। शायद इसीलिए संविधान की भाषा समिति ने देश के राजकाज की भाषा को राष्ट्रभाषा न कहकर राजभाषा कहा। इससे राष्ट्रभाषा शब्द का अस्तित्व करीबन खत्म ही हो गया। निश्चित व निष्कर्ष रूप में ये कहना मुश्किल है, पर ऐसा लगता है कि यदि कांग्रेस अपने अधिवेशन के पहले अन्य राजनीतिक पार्टियों से संपर्क करती, यदि लोगों को विश्वास में लेकर किया जाता तो हिंदी के प्रचार प्रसार से लोगों को शायद आपत्ति नहीं होती और हिंदी को पीठासीन करना आसान होता। शायद हिंदी के प्रति लोगों का रवैया आज जैसा नहीं होता और हमारी राजकाज की भाषा हिंदी देश की राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा ही होती। लेकिन आज भी हिंदी के समर्थक हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते नहीं थकते। आज भी कई लोग राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा के फर्क से वाकिफ नहीं हैं। इससे ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेसी आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा ही समझते हैं, जिसके कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा कहने में कांग्रेस अधिवेशन की बू आती है और लोगों के विचार भटक जाते हैं। अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हिंदी के प्रणेताओं ने हिंदी के चहेतों को भी ऐसा खेल खिलाया कि उन्हें भी हिंदी से नफरत सी हो गई। आज भी ऐसे कार्यालय हैं जहां हिंदी अपनाने पर उसका अंग्रेजी अनुवाद मांगा जाता है। कार्यालय इस तरह के अनुवाद की सहायता कर लोगों को हिंदी के प्रति उत्साहित कर सकता है। हर अभिभावक चाहेगा, और उसे चाहना भी चाहिए, कि उसके दिल का टुकड़ा आसमान की ऊंचाइयों को छुए। यदि उस मुकाम के लिए उसे हिंदी सीखनी या सिखानी पड़े तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो हिंदी सीखेगा भी और सिखाएगा भी। अपने बच्चे को हिंदी के स्कूलों में भी पढ़ाएगा। तथ्यों की मेरी जानकारी के तहत भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, भाषा निरपेक्ष नहीं, इसलिए यहाँ आप किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने से नहीं रोक सकते। लेकिन भाषा के मामले में ऐसा नहीं है, और भारतीयों को हिंदी सीखने के लिए कहा जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि राजनीतिक समीकरणों के लिए हमने हिंदी की ऐसी हालत क्यों बना दी। हिंदी सीखने में कुछ कठिनाइयां हैं जिन पर मैं यहाँ विचार करना चाहूंगा। विभिन्न भाषा भाषी हिंदी का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते। हिंदी के जानकारों को चाहिए कि उन्हें सही उच्चारण से अवगत कराएं, न कि उन पर हंसें। कई बार तो ऐसा समझ में आया है कि गलत उच्चारण के तर्क संगत कारण हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहूंगा। दक्षिण भारतीय खाना खाया का उच्चारण काना काया के रूप में करते हैं। वो इसलिए कि तमिल वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग में दो ही अक्षर होते हैं, जैसे क अंग वहाँ ख ग घ अक्षर नहीं होते, इसलिए कमला और गमला की लिपि तमिल में एक जैसी होगी। वे गजेंद्र को कजेंद्र कहेंगे। हमें लोगों की ऐसी समस्याओं को समझना चाहिए और हिंदी में उनकी रुचि का स्वागत करना चाहिए, न कि उनकी गलतियों पर हंसना चाहिए। लोग हंसेंगे, ऐसी भावना आने के बाद कोई भी आगे हिम्मत नहीं कर पाएगा। यदि किसी उत्तर भारतीय को दक्षिणी भाषा के शब्दों का उच्चारण करना पड़े तो कठिनाइयां समझ में आ जाएंगी। दक्षिण भारतीयों की जुबान काफी लचकदार होती है, इसलिए क्लिष्ट से क्लिष्ट शब्दों का उच्चारण भी वे आसानी से कर लेते हैं। और यही एक खास कारण है कि दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों की अपेक्षा उत्तम व सफल स्टेनोग्राफर्स होते हैं। अब पूर्व की ओर चलें। बंगाल का साहित्य बहुत ही धनी है, फिर भी वहाँ की भाषा में दो अक्षर एक जैसे हैं। क्या ये उचित माना जाए कि बंगाली जैसी समृद्ध भाषा के दो अक्षर एक से हों? अब देखिए, BISWAS शब्द को अपनी भाषा में विश्वास लिखते हैं और विश्वास उच्चरित करते हैं। उनके इस उच्चारण से साफ जाहिर है कि दोनों व का उच्चारण भिन्न है, और ये तब ही संभव होगा जब ये दो अलग अलग वर्ण रहे हों। अंग्रेजी के दो वर्णों के लिए एक ही वर्ण व लिखा जाता है, लेकिन उनका उच्चारण अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि बंगाली में व का प्रयोग नहीं होता। यदि मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही है तो सन 1960 के दशक में बंगाली पत्रिका नव कल्लोल के अंतिम पृष्ठ पर अंग्रेजी में NAVAKALLOL लिखा जाता था, लेकिन अब उसे NABAKALLOL लिखा जाता है। बंगाली भाषा के उच्चारण के बारे में लोग मजाक करते हैं कि मुंह में रसगुल्ला डालकर हिंदी बोलिए, आपका उच्चारण बंगाली भाषा की तरह हो जाएगा। इसी तरह का असर बंग भाषियों के हिंदी उच्चारण में मिलता है। कोई भाषाविद ही इसका पर्दे के पार की खबर दे पाएगा। बंग भाषी आपसे पूछेंगे, चाय खाएगा, सिगरेट खाएगा? लेकिन वे जलपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, मदपान करते हैं, रसपान करते हैं। पंजाबी लिखी जाने वाली गुरुमुखी लिपि में आधा अक्षर लिखने का प्रावधान नहीं है, इसीलिए पंजाबी स्कूल को सकूल, स्त्री को सत्री या स्त्री, इंद्र को इंदर, शब्द को शब्द लिखते हैं। लेकिन द्वयत्व की मात्रा होने की वजह से वे मम्मा, दद्दा, चम्मच, कत्था, गैया जैसे शब्दों का उच्चारण आसानी से कर लेते हैं। आज भी हिंदी ने इस द्वयत्व की मात्रा को नहीं अपनाया है। हिंदी को चाहिए कि अन्य भाषाओं की ऐसी खूबियों को स्नेह से अपने में समावेश करे और अपनी सामर्थ्य बढ़ाती रहे। महाराष्ट्र में ज को झ सा जोड़ देकर उच्चरित किया जाता है। वहाँ यानी मराठी भाषा में अक्सर छोटे को तू व बड़ों को तुम कहकर संबोधित किया जाता है। आप शब्द शायद मराठी में काफी बाद में आया, इसलिए अभी केवल शिक्षित वर्ग ही इसका प्रयोग करता है। इन तथ्यों को विचारने पर यह प्रतीत होता है कि जिस तरह ठंडे प्रदेश में टाइट और गर्म प्रदेशों में ढीले पोशाक पहनना नियति है, जिस तरह ठंडे प्रदेशों में अमिष भोजन व मदिरा सेवन को आवश्यक समाना गया है, उसी तरह प्रदेशों की बोली में भी वहाँ के वातावरण का समुचित असर देखने को मिलता है। ऐसा देखा गया है कि ठंडे प्रदेशों की भाषा अपेक्षाकृत सरल उच्चारण वाली होती है और गर्म प्रदेशों की भाषा कठिन उच्चारण वाली होती है। इसलिए दक्षिण भारतीय भाषाएं उत्तर भारतीयों के लिए काफी कठिन है। भौगोलिक कारणों से शायद दक्षिण भारतीयों की जुबान में ज्यादा लचीलापन होता है, जो उन्हें कठिन शब्दों का सही उच्चारण करने में सहायता देता है। उधर आसाम में और इधर गुजरात के कच्छ इलाके में स को ह सा उच्चरित किया जाता है। ऐसा लगता है इन्हीं किन्हीं कारणों से सिंधी हिंदी, सिंधु हिंदू शब्द बने होंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता से ही शायद हिंदू घाटी की सभ्यता रही होगी, इससे हिंदुओं का संबंध होने का ये भी एक कारण हो सकता है। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों का रूप स्वरूप परिवर्तन भी काफी हुआ है, वर्तनी के नियम भी बने व बदले हैं। अ, झ, ख, ण, श्र, क्ष, त्र और ज्ञ अक्षर बात की देन है। पहले इन्हें अलग अलग तरह से लिखा जाता था। लेखनी की सुविधा, विशिष्ट शब्दों में अक्षरों, अक्षर युग्मों के बीच संचय ने इनकी जरूरतों को जन्म दिया। पहले ख अक्षर र व जैसा लिखा जाता था। यदि इसे र और व का युग्म पढ़ें तो अर्थ ही अलग हो जाता था, इसलिए इनके बीच जोड़ का प्रावधान देकर ख बनाया गया। पंचांग को सही लिखना हो तो प के बाद आधा य, चा और अंगा के बाद ख लिखना होगा। सरलीकरण ने इसे नया रूप दिया। पंचमाक्षर नियम के अनुसार किसी भी शब्द में पूर्ण बिंदु यानी अनुस्वार के बदले उसके बाद आने वाले अक्षर के वर्ग का पंचमाक्षर ही लगाया जाना चाहिए। या यूं कहिए कि हर भाषा के लिए एक अनुस्वार हमारी वर्णमाला में दिया गया है और उसे उस वर्ग के अक्षरों के साथ प्रयोग करना चाहिए। इसके उदाहरण है पंचांग, भंडार, चंदन, कंबल, इंच, कंकाल। लेकिन इस दुविधा से बचाने के लिए पूर्ण बिंदु या अनुस्वार का सहारा लेकर हिंदी को सरलीकृत किया गया। अब इन शब्दों को आसानी से हम आधा य, आधा ण, आधा न, आधा म की जगह अनुस्वार लगाकर पंचांग, भंडार, चंदन, कंबल, इंच और कंकाल लिख सकते हैं। इसके साथ वर्णमाला के हर वर्ग में अनुस्वार की आवश्यकता खत्म हो गई है और कुछ ही समय में ये अपने आप ही लुप्त हो जाएगा। ऐसा ही हाल हुआ था उऋण के साथ। यहाँ पहले बड़ी री लिखा जाता था, जहाँ छोटी री का प्रावधान हो गया और बड़ी री लुप्त हो गई। वर्तनी के एक परिवर्तन से हुआ का बहुवचन हु के बाद ए तथा पाया का बहुवचन पा के बाद य में ए की मात्रा बना। यानी स्वर के बहुवचन में स्वर व व्यंजन के बहुवचन में व्यंजन को स्थान दिया गया। इससे सरलीकरण हुआ और मूल रूप की जानकारी उपलब्ध रही।